चीन के किसी एक गांव में एक कन्या रहती थी जिसका नाम था लीली। वो जो ली ली थी, एक दिन उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल आ गई और ससुराल में उसकी सास, उसका पति और वो, बस ऐसे तीन ही लोग थे। पहले कुछ दिन ठीक से चले, परंतु बाद में हर दिन झगड़ा, हर दिन खिटपिट और हर छोटी छोटी बात में कुछ ना कुछ होता। रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो ली ली अपने मायके चली गई और बहुत रोई और सोचने लगी कि कुछ भी करके ये मेरी जो सास है, जो मुझे इतना सताती है, मुझे इसका कुछ तो करना होगा। जैसे कि वो सास उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और वो एक वैद्य के पास जाती है और उस वैद्य से पूछती है कि कुछ ऐसा इलाज बताओ जिससे मैं मेरी सास से मुक्त हो जाऊं, कुछ ऐसी कुछ दवाई, कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी होगी। तो वो वैद्य कहता है, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो वैद्य ली ली को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां देता है और कहता है, ये जड़ी बूटियां रोज अपनी सास को खिलाना, जो भी भोजन बनाओ उसमें थोड़ा थोड़ा रोज डालते जाना, इसका असर आने को 7-8 मास लगेंगे, परंतु वो इस तरह से मर जाएगी कि तुम पर किसी का शक नहीं होगा। पर एक शर्त है, तुम्हें उससे बहुत प्यार से व्यवहार करना पड़ेगा, ऊपर से दिखावा करना पड़ेगा कि तुम बदल गई हो। रोज उसके लिए कुछ कुछ बनाना पड़ेगा। वो कहती है, मैं उससे मुक्त होने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, उसने जितना मुझे सताया है मैं नहीं भूल सकती, कुछ भी करूंगी। तो वो ली ली वापस अपने घर आ जाती है और अब वो अपनी सास के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करती है, रोज नए नए पकवान व्यंजन बना करके खिलाती है। कभी कभी क्रोध बहुत आता है, परंतु फिर से उस वैद्य की बात को याद करके अपने क्रोध को वश में करती है और हर भोजन में वो जड़ी बूटियां रोज डालने लगती है। 6 मास गुजर जाते हैं, अब उसकी सास का व्यवहार पूरा ही बदल गया। वो जो कभी उसके खिलाफ बहुत शिकायत लगाती थी, अब वो सास घर घर में जाकर ली ली की तारीफ करती है और सब कुछ परिवर्तन हो गया है। अब ली ली को अलग प्रकार की चिंता होने लगती है कि ये तो अब मरने वाली है। बहाना करके वापस मायके आती है और वापस वैद्य जी से मिलती है कि कुछ भी करो, अब मेरी सास पूरी बदल चुकी है, उस जहर का असर खत्म हो जाए, ऐसे कोई इलाज बताओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मर जाए अब, क्योंकि वो पूरा हृदय परिवर्तन हो गया है। वो वैद्य कहता है, जहर जड़ी बूटी में नहीं, तुम्हारे दिमाग में था, जहर तुम्हारी सोच में था, जहर तुम्हारे नजरिए में था, और वो तुमने प्रेम से, शिष्ट व्यवहार से पहले ही खत्म कर दिया है। और रही बात जड़ी बूटियों की और उस जहर की, तो वो तो स्वास्थ्यवर्धक दवाई थी, टॉनिक। जाओ अब जाके खुशी से, खुशहाली से संसार करो। स्नेह की शक्ति, आत्मिक स्नेह की शक्ति, शीतलता की शक्ति, अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। स्नेह चंद्रमा है, चाहे किसके मन में कितना भी जहर क्यों ना हो, स्नेह की शक्ति से उसे बदला जा सकता है। तो शीतलता की आज सुबह की मुरली में एक परिभाषा क्या है? शीतलता क्या है? स्नेह की शक्ति है, आत्मिक स्नेह की शक्ति है। वो चंद्रमा है, शीतलता बरसाता है। चाहे कितनी भी क्रोधित आत्मा क्यों ना हो, संतप्त हृदय क्यों ना हो, परंतु शीतलता की शक्ति से उसे शांत कर दिया जा सकता है। तो आज कौन किसको देख रहा है? सूर्य, चंद्रमा और तारे कभी एक साथ रहते हैं क्या आकाश में? सूरज और चंद्रमा हो सकता है, दोनों ही क्षितिज के जब ऊपर है, परंतु सूरज भी है और चंद्रमा भी है और तारे भी हैं। यह विचित्र तारामंडल है जिसमें ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। किसके साथ? ज्ञान चंद्रमा के साथ। और सम्मुख कौन है? सितारे हैं। और वो सितारे कैसे हैं? लकी और लवली सितारे हैं। और ये तारामंडल कैसा है? न्यारा और प्यारा। ये रूहानी, स्पिरिचुअल मिल्की वे, स्पिरिचुअल नेबुला, स्पिरिचुअल गैलेक्सी, ये रूहानी अलौकिक तारामंडल है। तो बाप ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा इस तारामंडल को देखकर हर्षित हो रहे हैं। न्यारा है, प्यारा है, यूनिक है ऐसा तारामंडल वो साइंस वाले कभी ना देख सकते और ना ही जान सकते हैं। विचित्र है, विलक्षण भी और निराकार भी, दोनों ही अर्थ विचित्र के। तो ऐसा दृश्य बाबा ने देखा। और ज्ञान सूर्य से हम क्या कर रहे हैं? और ज्ञान चंद्रमा से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सूर्य से सत्यता की किरणें ले रहे हैं और चंद्रमा से शीतलता। सूर्य से लाइट और माइट लिया जा रहा है। सूर्य से क्या ले रहे हैं? लाइट माइट लेकर सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्यता की शक्ति को धारण कर रहे हैं और चंद्रमा से शीतलता की किरणें ले रहे हैं। तू शीतल झरना प्रभु। तो एक तरफ सत्यता की अथॉरिटी है और दूसरी तरफ शीतलता है। बाबा ने कहा दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही समान, दोनों ही इक्वल, दोनों ही चाहिए। इसलिए सहज सफलता के लिए एक भी कम ना हो। तो एक तरफ शीतलता धारण कर रहे और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी बन रहे। मुरली में विस्तार शीतलता का किया है बाबा ने। यह शीतलता की शक्ति साथ बातें करती है। कौन कौन सी क्या कर देती है? आराम, किसको आराम? सबसे पहला तो जो क्रोधित आत्मा है और जो उल्टे नशे वाली आत्मा है उनको शीतल कर देती है। जैसे एक स्त्री हिमालय की जो गुफाओं में एक साधु के पास जाती है और कहती है कि मेरा पति इतना क्रोधित है, मैं क्या करूं, कैसे उसको शांत करूं, जब से युद्ध से लौटा है। साधु कहता है कि युद्ध हमेशा व्यक्ति के साथ ऐसा ही कर देता है, तुम एक काम करो कि मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी देता हूं, वो लीली वाली नहीं है, दूसरी जड़ी बूटी है, कि उसे तुम खिला दो तो तुम्हारा पति एकदम प्रेम से भर जाएगा, हमारी भाषा में ज्ञान में आ जाएगा। परंतु एक मुश्किल है, एक ऐसे वस्तु की आवश्यकता है जो मेरे पास नहीं है, और वो है एक शेर के मूंछ का बाल, वो तुम मुझे ला दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूं, और वो जंगल जाती है और दूर से देखती है शेर तालाब के पास है, परंतु जैसे ही शेर को देखती है घबरा जाती है, वापस आ जाती है, दूसरे दिन फिर जाती है, तीसरे दिन फिर जाती है, 2-3 मास तक चुपचाप जाती है, झाड़ के पीछे से देखती है उस शेर को, शेर दहाड़ लगाता है, सहम जाती है, फिर से वापस आ जाती है। परंतु रोज क्रम चालू है, शेर को भी उसके मौजूदगी का एहसास होने लगता है कि आसपास कोई है जाना पहचाना सा, और फिर धीरे धीरे वो और नजदीक जाती है और नजदीक जाती है, और उसके लिए फिर भोजन भी लेके जाती है रोज थोड़ा थोड़ा, और दोनों में बहुत दोस्ती हो जाती है। और एक दिन मौके का फायदा उठाकर उस शेर की मूंछ का एक बाल निकाल लेती है और भाग भाग के साधु के पास जाती है कि ये लो बाल और फटाफट जड़ी बूटी बनाओ। साधु उस बाल को लेता है और आग में फेंक देता है। वो कहता है ये क्या कर दिया, कितनी मेहनत से ये बाल लाया था मैंने, जड़ी बूटी का क्या होगा? वो कहता है जड़ी बूटी तुमको मिल चुकी है, यदि तुम एक खूंखार हिंसक शेर को वश में कर सकती हो तो क्या अपने प्रेम से और धैर्य से, अपनी स्नेह की शक्ति से अपने पति को वश में नहीं कर सकती? तो सबसे पहला काम स्नेह शीतलता की शक्ति क्या कर दी है, चाहे कितनी भी उल्टे नशे वाली आत्मा हो, चाहे कितनी भी विरोधी हो, यहां के कोई सिद्धांत उसे स्वीकार नहीं है, जहर से भरा है मन, उल्टे विचार है, ऐसी आत्मा को भी शीतलता की शक्ति क्या कर देगी, शीतल शांत, ये सबसे पहला। दूसरा, अहंकार के वश मैं करने वाली जो आत्मा है वो क्या करने लगेगी, बाबा 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 कहने लगेगी। किसी भी आत्मा के हृदय में जो अहंकार से भरा है ज्ञान के द्वारा प्रवेश नहीं किया जा सकता। उसके अहंकार को हराकर यदि हम उसे ज्ञान में लाना चाहते हैं तो शायद वो दिशा वो रास्ता ही गलत है। प्रेम ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो अहंकारी के हृदय में भी प्रवेश करता है। इसके लिए ये भाव रखकर किसी का कोर्स कराना कि हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो, हमसे सुनो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, हम तुमको समझाते हैं सृष्टि चक्र है कैसा है, तुम्हें अपने सारे सिद्धांत बदलने पड़ेंगे, हम अब तुमको समझाते हैं सत्य क्या असत्य क्या, सार क्या असार क्या, नित्य क्या अनित्य क्या, सत्य ज्ञान क्या, परमात्मा परिचय क्या, 5000 साल का चक्र कैसा है, अब तक जो तुमने सुना है सब भूल जाओ, मैं तुमको बताता हूं ज्ञान क्या है। यहां हम अपने अहंकार की तृप्ति ज्यादा कर रहे हैं, आत्मा का कल्याण कम, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार समाया हुआ है कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो दूसरा काम क्या करती है, शीतलता की शक्ति जो अहंकार से भरी हुई आत्माएं और जहां मैं है वहां क्या कर देती है, बाबा बाबा बाबा, परमात्म प्रेम का झंडा अहंकार रूपी छाती में भी गाड़ देने, ये शीतलता का काम है। ये दूसरा। तीसरा, शीतलता की शक्ति किसको सिद्ध करती है, सत्यता को सिद्ध करती है। अगर वैसे ही सुनाने जाओ तो क्या होगा, लोग सिद्ध नहीं होगा, लोग समझेंगे ये इनकी जिद है, ये जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती सुनाते हैं, इनसे बच के रहना। एक बार पकड़े गए तो एक घंटा तक छोड़ते नहीं है, ध्यान से जाना और कहना कि 5 मिनट हमारी गाड़ी है, लेट हो रहा है, जल्दी जाना है, क्योंकि इनमें से एक एक जब पकड़ लेता है तो जब तक पूरा ज्ञान ना सुना दे छोड़ता नहीं है। सेवा करनी चाहिए परंतु रहम दिल बनकर, बेरहमी से रहम नहीं करना है कि सामने वाला सीधा भाग जाए, अभी तक उसने कभी कुछ नहीं सुना था, आत्मा से चालू किया और सीधा ब्रह्मचर्य पर पूरा किया, भयभीत डरने लगा, पहले ही संसार में दुखी है, संतप्त है, संसार के स्ट्रेस और टेंशन में है, और अभी तुमने ऐसी बात बता दी कि उसका टेंशन अब कम नहीं बढ़ गया है। एक तरफ है सत्यता और दूसरी तरफ है शीतलता। शीतलता का यहां अर्थ होगा नम्रता। अलग अलग जगह पर शीतलता के अलग अलग अर्थ है, अहंकार नहीं। अथॉरिटी है, चाहे प्रेसिडेंट भी सामने आ जाए अथॉरिटी से उसको सुना दे, ऐसी पावर एक एक ब्राह्मण आत्मा को भगवान ने दी है, परंतु साथ साथ क्या हो, नम्रता विनम्रता दोनों ही साथ साथ हो, समान हो। बाबा ने कहा साथ साथ भी और समान भी। जैसे पुराने जमाने में जहां पर लकड़ी के घर रहते थे, अगर किसी घर में आग लग जाए तो एक गांव में ऐसा नियम था कि एक ऊंचा सा टॉवर बना था, और जैसे ही अगर कहीं आग लग जाए एक वॉचमैन वहां रहता था और वहां से बिगुल बजाता था, सारे गांव वाले आ जाते थे और एक सर्कल बना देते थे वहां पर कुआं और जहां आग लगी, और फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पानी की बकेट देते देते आग को बुझा देते थे। इस तरह की सिस्टम थी। एक बालक दूसरे गांव से एक दिन उस गांव में आया और उसने अचानक देखा ये बिगुल कैसे बज रही है, वो पूछता है ये क्या है, वो कहते हैं जब भी आग लगती है हम ऐसा करते हैं, अलार्म होता है और सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और आग को बुझा देते हैं। वो कहता है इतनी नई बात तो मैंने कभी सीखी नहीं, ये प्रयोग मैं अपने गांव में भी करूंगा। हमारे गांव वाले की वो अनभिज्ञ इस बात से अब तक, और वो बहुत खुशी खुशी से जाता है और कहता है मैंने एक नई बात सीखी है नए गांव में और आप सबको बताता हूं। और वो एक झोपड़ी होती है दूर कहीं, उसको आग लगाओ कहता है, अब देखो मैं कैसे बुझाता हूं आग को, और उस झोपड़ी को आग लगाता है और वो कहता है अब देखो मैं क्या प्रयोग करता हूं। वो बिगुल लेके आता है और उसको बजाता है, वो कहता है जैसे मैं ये बजाऊंगा आग बुझ जाएगी, पर आग को संगीत की भाषा का क्या पता, उसने कुछ और सुना ही नहीं, केवल इतना ही सुना कि बजाना है, और वो बजाते जाता है बजाते जाता है, झोपड़ी की आग दूसरे झोपड़ी को, और धीरे धीरे सारा गांव जल जाता है। गांव वाले कहते तुमने ये क्या कर दिया, वो कहते ऐसा ही सुना था मैंने, कुछ छूटा तो नहीं, बस इतना ही सुना था, छूटा ये था कि बिगुल तो बजाना था परंतु साथ साथ क्या करना था, वो बिगुल किस लिए था, वो अलार्म था, वो किस लिए था, वो पानी लाने के लिए था ताकि सारे एकत्र हो जाए और पानी डाले, केवल केवल बिगुल बजाने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ शीतलता का जल भी डालना पड़ेगा। बाबा ने कहा शीतलता का पहले जल डालो, आत्माओं को योग्य बनाओ, उसके बाद में वो बनेगी योगी और फिर सत्यता की शक्ति को, सत्यता की अथॉरिटी को समझ पाएगी। तो सबसे पहला काम शीतलता की शक्ति करती है, क्रोध, क्रोधित और उल्टे नशे वाले को शीतल। दूसरा काम जो मैं करने वाला है उसको बाबा बाबा। तीसरा काम सत्यता को सिद्ध करना, ये तीसरा काम सत्यता शीतलता की शक्ति करती है। चौथा काम, चौथा कौन सा? आगे, उससे पहले और कुछ, उससे पहले और कुछ, उससे पहले और कुछ, उससे पहले और कुछ, देह और देह तो कहां दूर है अभी, वो तो बहुत दूर है, अभी हम बहुत पहले हैं, अग्नि अभी आग लगने को बाकी है। हाँ, ये बात यहां बाबा ने कही है, आत्माओं को क्या करती है, पहले योग्य बनाती है और फिर उनको योगी बनाती है और फिर उनको सत्यता तक ले जाती है। जो बात पहले की वो अलग से यहां पर बाबा ने कही है, क्या करती है आत्माओं को, योग्य बना देती है और फिर योगी बनेंगे। सीधा ही कोई योगी नहीं बन सकता, धीरे धीरे, पहले प्यार से, स्नेह से, सहयोग से, धीरे धीरे योगी बनेगी। अगला, शीतलता की शक्ति क्या करती है, विचार, संकल्प बहुत तेज रहती है, बोल में, कर्म में, चलन में। तो क्या होगा वहां पर, एक्सीडेंट, क्या होगा वहां पर, वेस्ट, क्या होगा वहां पर, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो शीतलता की शक्ति क्या करती है, विचारों को शीतल कर देती है, एक्सीडेंट नहीं होगा, कंट्रोल में रहेंगे विचार, टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपना भी और दूसरों का भी। संकल्प, बोल, चलन, कर्म, संपर्क सबको शीतल कर देती है। ये काम किसका है, शीतलता की शक्ति का। अगला, जैसे कोई वृक्ष क्या करता है, छाया देता है, जैसे कड़ी धूप, भगवान उदाहरण दे देकर समझाता है। उदाहरण कहां से देता है, इस दुनिया के, ताकि समझ सके, क्योंकि उसका ज्ञान जो है वो निराकार ज्ञान है। वो अपनी पॉइंट्स को इस संसार के उदाहरण रूपी खूंटी पर टंगाता है और समझाता है। संयोग की छाया, शीतलता की शक्ति आत्माओं को क्या देगी, संयोग की छाया देगी। बाबा ने कहा छींटे डालो आत्माओं पर ध्यान ये रखना कि तुमको स्वयं सेक ना लगे, नहीं तो आग आग को पकड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम शीतल रहे, वातावरण की आग हमें ना जलाए, फिर शीतलता का आत्माओं को वरदान दो, क्योंकि आत्माएं भाग भाग कर तुम्हारे पास आएगी, एक सेकंड के लिए शीतल बना दो, ऐसा कहेगी, एक सेकंड के लिए शीतलता दे दो, इतनी आग लग रही है संसार में। तो संयोग, छाया, सहारा आत्माओं को। शीतलता की शक्ति से मिलेगा। उसके बाद अगला, चार प्रकार की आग है, उसमें क्या करेगी शीतलता, शीतल बनाएगी। कौन कौन सी आग है, विनाश की आग, विकारों की आग, ममता की आग और चौथी पश्चाताप की आग। बाबा ने कहा सारा संसार जल रहा है और जब जलते हैं तो क्या अनुभव होता है? कौन कौन जला है? शरीर। उंगली जलती है तो क्या होता है? जलन, दर्द, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बहुत पीड़ा होती है कोई जलता है तो। बाबा ने कहा इन चार बातों से संसार जल रहा है। सबसे पहले विकार, विकार ले लो पहले तो। संसार में विकार ही विकार है। विकार सर्वव्यापी है, हर मन में विकार छिपे हुए समाये हुए हैं। इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि जिसमें है शायद उसको भी खबर नहीं कि मुझ में वो विकार छिपा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा अंश भी रहा, थोड़ा सा भी आग रही तो बाहर की आग अंदर की आग को पकड़ लेगी। कोई भी विकार अंश भी रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि बाहर और अंदर एक हो जाएगा और फिर अंदर आग लग जाएगी। और इससे मुक्त होने की विधि अनादि और आदि स्वरूप को याद करो। तो एक है परम धाम का स्वरूप, एक है देवता स्वरूप। इन दो का अभ्यास करना है लंबा लंबा समय तक। परम धाम में संकल्प लेंगे अलग अलग, मैं निराकार हूं, मैं निराकार। बाबा ने शब्द प्रयोग किया अनादि सतो प्रधान, मैं निराकार हूं, मैं निर्बंधन हूं, मैं निर्वाण हूं, निर्लेप हूं, मैं मौन हूं, मैं निराधार हूं, मैं निरसंकल्प हूं, मैं परम धाम के संकल्प सारे क्या क्या है। मैं निर्बंधन आत्मा हूं, मैं निराकार आत्मा हूं, मैं पांच तत्वों के आकर्षण से परे आत्मा हूं, मैं ब्रह्म तत्व में रहने वाली आत्मा हूं, ब्रह्म लोक में रहने वाली आत्मा हूं, मैं शांति धाम में रहने वाली आत्मा हूं, मैं निज स्वरूप में स्थित आत्मा हूं, निर्लेप हूं, निराधार हूं, निर्वाण हूं, मौन हूं, निर्बंधन हूं, निराधार हूं। एक एक संकल्प शक्तिशाली संकल्प है। इस संसार के तत्वों के आकर्षण से परे हूं, क्योंकि मैं जहां हूं वहां तत्व है ही नहीं, मैं ब्राह्मी स्थिति में स्थित हूं। आज सुबह की मुरली में वरदान है ब्रह्मचर्य संकल्प और स्वप्न में भी खंडित ना हो। उस ब्रह्म की स्थिति में स्थित होना अर्थात ब्रह्मचर्य में स्थित होना। परम धाम की स्थिति है वो वास्तव में ब्रह्मचर्य की स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति। तो परम धाम की स्थिति में अमृत वेला लंबा समय तक स्वयं को स्थित कर देना, मैं निरसंकल्प आत्मा हूं। इस संसार के, इस दुनिया के, इस लौकिक के सारे संकल्प समाप्त। लंबा लंबा समय तक परम धाम की स्थिति, ज्वालामुखी योग, उससे ही सारे विकर्म धीरे धीरे भस्म होंगे। उसके बाद में सतयुग के संकल्प कौन कौन से हैं? सात। मैं 16 कला से संपन्न हूं, मैं सर्व गुण संपन्न हूं, मैं सतो प्रधान हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं, मैं आत्म अभिमानी हूं, मैं डबल अहिंसक। ये सतयुग के संकल्प है सात, और बहुत सारे जोड़े जा सकते हैं, परंतु कुछ चीजें रोज अभ्यास करने की है, उसमें राउंड फिगर की आवश्यकता है ताकि उसको रिपीट करते रहे बार 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 बार। मैं सतो प्रधान हूं, मैं आत्म अभिमानी हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं 16 कलाओं से संपन्न हूं, मैं सर्व गुणों से संपन्न हूं। लंबा लंबा समय सतयुग की उस अवस्था में स्थित करना, अपने आप को देखना, उस सारे संकल्पों को, वाइब्रेशंस को, उन संस्कारों को कैच करना, तो यहां वो संस्कार प्रकट होते जाएंगे। और अभी जो आसक्ति है देह में, अभी जो विकार है आत्मा में, वो धीरे धीरे सारे निकलते जाएंगे। तो ये दो विधि है, किसकी? विकारों की आग से बचने के लिए। और यहां क्योंकि विकार शब्द का प्रयोग है, यहां स्पेसिफिक है काम विकार, क्योंकि क्रोध की चर्चा कहीं और कर ली बाबा ने, ममता की चर्चा कहीं और कर ली, इसलिए यहां विकार अर्थात काम। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, कूट कूट के पवित्रता के वो संस्कार अंदर भरे हैं, उनको इमर्ज करना है। तो सबसे पहली आग विकारों की आग, बाबा ने कहा इसको उस स्वरूप में वंश को इमर्ज करो, शीतलता की शक्ति। दूसरी आग है विनाश की आग, इसको क्या करना है, निर्भय। दुनिया वाले कहेंगे हाय गया, और तुम कहोगे कहां गया, स्वीट राजधानी, मीठे राज्य में, मीठे घर गया। एक आंख में मुरली, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, और घुंघरू पहन के नाचना है। कौन से घुंघरू, नथिंग न्यू के घुंघरू, नए घुंघरू है ये। जो भी हो रहा है नाचना चालू कर देना, कोई भी परिस्थिति आई नाचना चालू, कौन से, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ये देखा हुआ है, ये तो पहले से हमको पता था, इसमें कुछ भी आश्चर्यकारक नहीं है। आत्माओं का पाठ, आत्माओं का भाग्य साक्षी होकर देखते रहना है। जैसे भगवान आता है नीचे शांतिवन में, बाबा कैसे साक्षी होकर सबको देखता है, सबका सब पता है उसे, ऐसा कोई नहीं जिसका उसे पता नहीं, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, फिर भी कितना मौन है, जरा भी इंटरफियर नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता, परम साक्षी भाव में स्थित है। खेल चालू है उसके लिए सब कुछ। तो आज ही क्लास से जाते ही क्या कर देना है, घुंघरू बांध के रखना है, नहीं बांधेंगे तो आंगन को दोषी ठहराते बैठेंगे। तो दूसरी आग है विनाश की, इसमें निर्भयता की शक्ति धारण करो। दूसरी आग विनाश की आग है, चारों तरफ हाहाकार होगा, कैसा वो दृश्य होगा, एक तरफ हाहाकार, एक तरफ विनाश ज्वाला, दूसरी तरफ जय जयकार, तीसरी तरफ बाप, दूसरी तरफ बाप की प्रत्यक्षता जय जयकार, और तीसरी तरफ साक्षात्कार, तीन दृश्य एक साथ, एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ भगवान की प्रत्यक्षता, और तीसरी तरफ जो ब्राह्मण आत्माएं हैं जिन्होंने लंबा समय तक अपने आप को योग्य और योगी बनाया, उनको क्या होगा, दिव्य साक्षात्कार होंगे। तो ये दूसरी आग विनाश की, तीसरी आग ममता, लगाव, आसक्ति, किस, लगाव व्यक्ति, संबंध, और तीसरा पदार्थ। ये तीनों ही आत्मा को पागल कर देते हैं, विक्षिप्त कर देते हैं। लगाव को आग क्यों कहा है, काम आ गए ठीक है, क्रोध आ गए ठीक है, पर लगाव भी आ गए क्यों, लगाव जलाता है, बेचैन करके रखता है, अगर जिससे लगाव है उसको कुछ हो जाता है तो फोन आ जाए यहां, बेचैनी, हलचल बहुत जलाता है, आग की तरह है। आत्मा जलती नहीं है वैसे तो, पर विकार आत्मा को जलाते हैं, नैनम दहति पावक, आग जला नहीं सकती आत्मा को, कौन जलाता है, विकार। और आसक्ति, लगाव, लागत, मोह, जितना ज्यादा उतनी आग भीषण। जो आत्मा जितना वैराग से युक्त है और निर्बंधन है और किसी से भी आसक्त नहीं है, वो उतना ही स्थिर है। और जो जितना आसक्त है, चाहे लौकिक में या अलौकिक में, इस अलौकिक परिवार में भी आपसी मोह आग है, सबका अपना अपना पाठ, आज यहां कल कोई कहां। पुरुषार्थ है स्वयं को निर्मोही अवस्था में ज्यादा से ज्यादा समय रखने का, तो ही आग नहीं लगेगी। तो तीसरी आग कौन सी? ममता की आग। किस किस से? व्यक्ति या कोई संबंध। संबंध ऊपर से बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है, सेवा का लेबल चिपका के रखा है, पर अंदर मोह है, आसक्ति है या विकार है। तीसरा पदार्थ, वस्तुएं, संसार की वस्तुएं। कल परसों मुरली में आया था भज गोविंदम, शंकराचार्य का लिखा हुआ है भज गोविंदम, वो सारा के सारा इस संसार से वैराग दिलाने वाला है। कौन तुम्हारा है, कौन पति, कौन पत्नी, कौन यहां किसका, अरे मूर्ख मन क्या कर। भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्तेव। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कहां अपने जान को हलकान किए जा रहे हो, कहां अपने आप को फंसाए हुए हो। निकलो बाहर इन आसक्तियों से, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो अपने हैं वही धोखा देंगे एक दिन। इसलिए हे मूर्ख मन, हे मूढ़ मते, क्या कर। भज गोविंदम, भज गोविंदम। कल परसों था ना मुरली में। चौथी आग पश्चाताप की आग। क्यों होती है? अप्राप्ति है इसलिए। अपनी ही की हुई गलती और उसका पश्चाताप, अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस, सबसे कमजोर करने वाला इमोशन है कि मेरे से पाप हुआ है, मेरे से पाप हुआ है, श्रीमत की अवज्ञा की है, उल्लंघन किया है। वो पाप इतना खतरनाक नहीं है जितना यह एहसास कि पाप हुआ है। पाप तो है ही, परंतु उसका यह एहसास कि यह मेरे से हुआ है, ये ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि यहां अब ब्राह्मण है, सारा ज्ञान है, उधर एक का एक गुना था, एक का सौ गुना है। इसलिए ऐसे कोई कर्म ना हो जो श्रीमत विरुद्ध हो। क्योंकि यदि हमसे ऐसा हुआ तो अज्ञान काल में जो आत्मग्लानी होती थी उससे अभी बहुत ज्यादा होगी। जैसे एक सांप एक बढ़ई एक कारपेंटर के घर घुस जाता है और वहां पे आरी होती है बहुत बड़ी, और वो जाते जाते वो आरी उसको लगती है और खून निकलने लगता है। उसको लगता है जैसे किसी ने मुझे आहत किया है, और वो उस आरी को फिर से मारता है, फिर से आहत होता है। उसको लगता है शत्रु खतरनाक है और एक बार आक्रमण करता है, फिर आक्रमण करता है, हर जगह से आक्रमण करता है उस आरी को। जहां जहां आक्रमण करता है खून बहने लगता है, और फिर सोचता है अब इसको ऐसा जकड़ लूं और मार दूं, और उस आरी के इर्द गिर्द लपेट जाता है और जोर से उसको पकड़ता है और खींचता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अपने ही हाथ से अपना जीवघात, स्पिरिचुअल सुसाइड। पता है आत्मा को ये मुझे नहीं करना है, फिर भी आकर्षण होता है करने का, करती है, फंसती है, मरती है, लहूलुहान होती है चेतना, और फिर रोती है, चिल्लाती है, पुकारती है, खत लिखती है बाबा को। उस दिन भी बताया था 3 P's इस ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना दो, 1972 की अव्यक्तवाणी। पाप करना P1, पश्चाताप करना 2 P, पार्डन माफी मांगना 3 P, बाबा ने कहा बार बार पाप करना, बार बार पश्चाताप करना और बार बार माफी मांगना, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बनाओ। बार बार वही गलती, फिर से बाबा को लेटर, बाबा ये हो गया, लेटर लिखा, दूसरे दिन फिर वही गलती, फिर वही गलती, फिर वही गलती, फिर वही पाप, सूक्ष्म पाप। और ब्राह्मणों के पाप बहुत सूक्ष्म है, मन और संकल्प लेवल पर पाप है, थॉट क्राइम, इसको कहते हैं थॉट क्राइम, संकल्पों के द्वारा अपराध हो रहे हैं, संसार में कर्म के द्वारा किए जाते हैं, बोल के द्वारा किए जाते हैं। ब्राह्मणों के पाप संकल्पों के तल पर है। ये चार प्रकार की आग है, इससे बचने का उपाय, बचने का उपाय, सर्व प्राप्तियों को सामने रखो, प्राप्तियों का चिंतन, क्योंकि प्राप्तियों का चिंतन जब नहीं होगा तो खालीपन होगा। ब्राह्मण आत्मा को विकारों का आकर्षण नहीं है, परंतु जब आत्मा खाली हो जाती है, लोनली हो जाती है, तो विकार वहां अपने आप आ जाते हैं, न चाहते हुए भी। विकार उस पड़ोसी की तरह है जिसको हम मिलना ही नहीं चाहते, परंतु वो खिड़की खोल कर देख लेता है, हम उसको देखना भी नहीं चाहते, उससे हमको नफरत है, पर सड़क से जाते हुए, सब्जी खरीदते हुए, दुकानदार के पीछे से खड़ा हो जाता है, अचानक से आता है, हम तो देखना ही नहीं चाहते उसको, पर वो बार बार प्रकट होते रहता है। तो सबसे पहली आग विकार, अपने अनादि और अविनाशी स्वरूप का चिंतन, अमृत वेला लंबा लंबा समय तक परमधाम में स्थित होने का अभ्यास करना है, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और ज्यादा, धीरे 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 धीरे, उस योग में सारे योग समाये हुए हैं। दूसरा विनाश की आग, जिसमें मैं निर्भय आत्मा हूं, मुझे किसी का भी भय नहीं। तीसरा ममता, आसक्ति, लगाव, लागत, अटैचमेंट, अपने ही अटैचमेंट को देखना है, मैं कहां अटैच हूं। हो सकता है किसी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं है, पदार्थ से नहीं है, परंतु किसी स्मृति से अटैचमेंट है, अतीत की, वो भी बंधन है। क्या कर दो यहां पर, बाप ही संसार है, तो बाकी सब कुछ क्या हो गया, आसार। ये विधि अपनाओ, बाप और मैं, इनमें जो सामीप्य है इसको बढ़ाना है, भगवान से नजदीकी बढ़ानी है। केवल अमृत वेला योग और मुरली और सारे दिन भर सेवाएं तो की, परंतु सेवाओं के बीच बीच में बाबा को आह्वान करना एक, और दूसरा उसका धन्यवाद, ये दो काम दिनचर्या में लाने हैं। बीच बीच में छोटी छोटी बात में मन से धन्यवाद ऊपर भेज देना है, बाहर स्तुति हो रही है, अंदर वो स्तुति को ऊपर भेज देना है, बाहर जो कर्म हो रहे हैं अंदर ही अंदर उनको ऊपर समर्पित कर देना है, और अलिप्त निर्लिप्त हो जाना है। कर्म करो, सेवाओं करो और डिटैच हो जाओ, सेवाओं से भी डिटैच, नहीं तो सेवा भी बंधन का कारण हो जाता है, सेवा में आसक्ति है। इसके पहले भी सुनाया था, एक विधि विदेशी महिला ने लिखा है, बहुत अच्छी बात, जिसे अध्यात्म का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसने ये बात लिखी है, शायद असंभव सी है, उसने कहा यदि कोई एक व्यक्ति किसी एक कमरे में 3 हफ्ता रहे बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के, बिना सोशल मीडिया के, बिना टीवी के, और उसी कमरे में बैठकर उसे सब मिले और उसे बस 16 घंटे तक वहां मेडिटेशन करे, और मेडिटेशन भी उसने बताया वो श्वास वाला, आ रही है जा रही है, इनहेल एक्सहेल, तो जब वो 3 हफ्ते के बाद बाहर निकलेगा एनलाइटेंट होगा, एक बदला हुआ व्यक्ति होगा। मौन में, एकांत में और संसार से डिटैच कुछ समय के लिए। जब इससे बाहर वो निकलेगा कुछ और ही होगा वो। ऐसा विदेश की एक ऑथर ने लिखा है, ही विल बी एन एनलाइटेंड पर्सन। एक दिन कर सकते हैं या कुछ घंटे, तो ये चार प्रकार की आग है। तो शीतलता की शक्ति क्या करेगी, इन चार प्रकार की आग को भी शांत कर देगी। और एक काम करती है शीतलता की शक्ति, कौन सी कौन सी? पहली बताया क्रोध, दूसरा अहंकार वाली आत्मा बाबा बाबा कहने लगेगी, तीसरा सिद्ध सत्यता को सिद्ध, चौथा योग्य और योगी, पांचवा संकल्प, छठवा छाया और सातवा ये। और एक करता है, थोड़ी देर के बाद उसकी चर्चा करेंगे। टीचर से मुलाकात की है बाबा ने, सात बातें बताई है यहां फिर से। ये ग्रुप कौन सा है? मेरे फ्रेंड से बाबा ने कहा, तुम सब कौन हो? लवलीन ग्रुप है ये। लव में लीन रहना अर्थात सभी विघ्नों से मुक्त। विघ्नों का चिंतन करना ही नहीं है, जब विघ्न आ जाए तो याद में मगन हो जाना। जो बाप का स्वभाव वो तुम्हारा स्वभाव, जो बाप के संकल्प वो तुम्हारे संकल्प। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी, तुम भी विश्व कल्याणकारी, उसकी यादों में मगन रहना। ये सबसे पहली बात। दूसरा, तुम्हारे कर्मों में क्या दिखाई दे, दर्पण। क्या बन जाओ तुम? दर्पण बन जाओ। तुम में कौन दिखाई दे? वो दिखाई दे। बेटे में बाप। तीसरा, तुम्हारे कर्म क्या करे। बाबा ने कहा तुम्हारे कर्म ऐसे हो जो बाप को प्रत्यक्ष करे। यहां पर विस्तार किया है और कहा है, अगर कोई ये कहता है कि ये बोलता अच्छा है, इसकी दृष्टि अच्छी है, इसकी सेवा अच्छी है, अर्थात क्या हुआ, उसमें फंस गए, व्यक्ति में फंसे हैं। यहां पर जगदीश भाई जी ने एक जगह लिखा है, दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट अबाउट पर्सनैलिटी वर्शिप। यहां किसी व्यक्तित्व की पूजा नहीं करनी है, चाहे किसमें कितने भी गुण हो, पर फंसे दिए किसने उसको। कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, किसमें कोई कला है, कोई निपुणता है, तो क्या उसमें फंस जाए? बाबा ने कहा इससे सदा शक्तिशाली नहीं बनेंगे। आत्माओं का संबंध बाप से जोड़ो, आत्माओं का संबंध आत्माओं से अगर जोड़ोगे तो सदा के लिए शक्तिशाली नहीं बनोगे। इसके लिए कोई कितना भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं उसका, परंतु उससे भी डिटैच। और विशेष तो उस व्यक्ति से डिटैच रहना है जिसको हम बहुत अपने मन में, जिसके लिए सम्मान है। क्यों क्यों? क्योंकि अगर उसके नजदीक जाओ और उसका एक अवगुण अगर देख लिया तो वो अब तक का सम्मान खत्म। इसलिए थोड़ा सा दूरी रहना है, विशेष तो उससे जिसके प्रति बहुत सम्मान है, रिगार्ड है, जिसको हम अपना आइडियल समझते हैं कि ये है योगी आत्मा, ये है तपस्वी आत्मा। ऐसी तपस्वी आत्मा को अमृत वेले अगर झुटका खाते देख लिया तो सारे लेक्चर डिलीट कर दो, नहीं सुनेंगे अभी इसके बाद। ये तो भोगी निकला, ये तो योगी है ही नहीं। चौथा, दिल खुश मिठाई। उसमें तीन चार बातें और कही बाबा ने, रोते तो नहीं हो, शिकायत तो नहीं करते, और तीसरा दूसरों के अवगुण तो नहीं देखते। रोना कमजोरी की निशानी है बाबा ने कहा। मन से, केवल आंखों से नहीं, मन से रोते रहते। अगर यहां पर हाथ अगर उठा दे कि एक मास में कौन कौन नहीं रोया, तो बहुत कम हाथ उठेंगे, इसलिए नहीं उठा रहे। मन से भी नहीं रोना है। दूसरा है शिकायत, दूसरों की शिकायत करना। दूसरों की शिकायत करना क्या हो जाएगा उससे, ना तो उसकी उन्नति ना हमारी उन्नति। तीसरा कमजोरी देखना। बाबा ने कहा जिसकी कमजोरी देखोगे उसकी कमजोरी तुम में आ जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जॉन रॉकफेलर था कभी, जिसकी कंपनी थी द स्टैंडर्ड ऑयल, सबसे बड़ी कंपनी ऑयल की उस जमाने में 1800। एक बार एक एम्प्लॉय के गलत डिसीजन से $2 मिलियन अर्थात आज की तारीख में 14 करोड़ 18 लाख समथिंग, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो कंपनी का मालिक जॉन रॉकफेलर बैठा था और कुछ लिख रहा था, उसका पार्टनर आया उससे बात करने के लिए, एडवर्ड बेडफील्ड। तो वो आके देखता है तुम क्या लिख रहे हो, तो वो ये लिख रहा था कि जिस व्यक्ति की वजह से नुकसान हुआ है उसका नाम ऊपर था और उसने कौन कौन से अच्छे डिसीजन पहले लिए थे उसकी लिस्ट बना रहा हूं जिससे कंपनी को फायदा हुआ था। अभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कंपनी को, पर इससे पहले कि मैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन लूं मुझे पहले यह जानना है कि उसने क्या क्या अच्छा किया था। वो कहता है ना मैं वो लिख रहा हूं, और वो ऐसा निष्कर्ष पर पहुंचकर इससे पहले 3 दफा इस व्यक्ति की वजह से कंपनी को बहुत फायदा हुआ था, अब मैं एक्शन लूंगा उसके विरुद्ध, नहीं तो क्रोध से भर गया होता। पहले किसका चिंतन, गुणों का, फिर बाकी। तो बाबा ने कहा ना शिकायत, ना अवगुण देखना और ना ही रोना, ये 3 बातें। उसके बाद में 5वीं पॉइंट, 2 सत्ताएं हैं, धर्म और राज्य। कैसे पराजित करना है उनको, पवित्रता की पावर से और एकता की पावर से। सत्ताहीन कर दो उनको, उनको लगे कि इनमें जो पवित्रता है हम में तो कुछ भी नहीं है इससे, इन तुलना में। ऐसा स्पॉटलेस हमारा चरित्र हो। उसके बाद में 6वां, संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट और सेवा से संतुष्ट। ये प्रश्न हर एक को अपने आप को रोज पूछना है, क्या मैं अपनी सेवा से संतुष्ट हूं, जिस स्थान पर रहता हूं उस स्थान से संतुष्ट हूं, जिन लोगों के साथ हूं उनसे संतुष्ट हूं, अगर नहीं तो कारण क्या है, और संतुष्ट असंतुष्टता का बीज कहां है, उनमें है या मुझ में है, या मेरा ये संस्कार है। और लास्ट पॉइंट, तुम सब कहां हो, स्टेज पर, चेक करो, चेंज करो। ये नहीं मैं फलाने देश में हूं फलाने वहां हूं, बाबा विदेश की बहनों से बात कर रहे हैं ये सारी बातें, क्या समझो हमेशा मैं विश्व की स्टेज पर हूं, सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो ऐसी ये 7 बातें हैं। और बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति के बारे में फिर कभी सुनाएंगे विस्तार से, अभी थोड़ा सुनाया है, विस्तार से फिर कभी सुनाएंगे। तो सारी मुरली का सार, एंगर सर्कल जो है उसको स्टॉप करना है। जैसे एक व्यक्ति है ऑफिस जाता है, उसका बॉस उसे बहुत डांटता है, घर आता है अपनी पत्नी को कहता है तुमको भोजन बनाना नहीं आता है, उसको बहुत डांटता है। पत्नी बेटे को डांटती है कि तुम हमेशा टीवी देखते रहते हो। बेटा बाहर निकलता है, एक कुत्ते को पत्थर फेंक के मारता है, वो कुत्ता दौड़ के जाता है और एक महिला को काटता है, वो महिला हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर को बहुत डांटती है, डॉक्टर परेशान होता है, घर आता है अपनी मां को बहुत डांटता है कि तुमने भोजन अभी तक तैयार क्यों नहीं रखा, मैं इतना काम करता हूं हॉस्पिटल में, भोजन तो कम से कम रखा करो। मां उसको कहती है बहुत प्यार से, वो कहते हैं आज मैंने तुम्हारे पसंद का बनाया है, फिर ऐसा वैसा, और उसको बहुत प्यार से सब कुछ करती है, और कल मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, फिर उसको सुलाती है। तो उस महिला ने एंगर का जो सर्कल था उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। वो काम हमको करना है, क्योंकि यहां हर एक जो क्रोध कर रहा है जरूर उस पर किसी ने कुछ तो किया है। एंगर का एक साइकिल है, एक सर्कल है, इसको तोड़ना है, और वो तोड़ने वाले हम बन जाए शीतलता की शक्ति से। ऐसे कैसे शीतलता की शक्ति धारण करने वाले, ऐसी स्नेह की शक्ति धारण करने वाले, ऐसी सत्यता की शक्ति धारण करने वाले, ऐसे पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले, ऐसी एकता की शक्ति धारण करने वाली, ऐसे बोलते जाओ, ऐसे लवली आत्माओं को, ऐसे लकी लवली सितारों को, ऐसे बाप की फ्रेंड्स आत्माओं को, ऐसे राइट हैंड मुरली में है आत्माओं को, ऐसे ऐसे योग्य और योगी आत्माओं को ऐसे चारों प्रकार की आग से मुक्त आत्माओं को, ऐसे अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसी निर्भयता की शक्ति में स्थित रहने वाली आत्माओं को ऐसे, सर्व प्राप्तियों को सामने रखने वाली आत्माओं को ऐसे, बाप ही संसार है इसमें स्थित रहकर सारी ममता को भस्म समाप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे, बाप की छत्र छाया में रहने वाली, सहयोग की छाया में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को ऐसे, निर्भय आत्माओं को ऐसे, आत्माओं को शीतल देवी और शीतल योगी बनकर शीतलता का वरदान देने वाली आत्माओं को, शीतलता की छींटे छिड़काने वाली आत्माओं को ऐसी, लगाव से मुक्त ऐसी, समय संकल्प सब कुछ बचाने वाली आत्माओं को, एक्सीडेंट न करने वाली आत्माओं को, और क्रोध का ये जो सर्कल है उसको ब्रेक करने वाली आत्माओं को, और मन में जो जहर है जो लीली के मन में था उसको हटाने वाली आत्माओं को, और शेर की मूंछ से बाल निकालने वाली आत्माओं को, यूनिटी प्यूरिटी। तो बहुत सारे समान, बहुत सारी चिंतन की बातें। बाबा ने कहा ये दो टॉपिक पर मनन करो, उनको समझाओ प्यूरिटी और यूनिटी पर। वैसे तो इतनी सारी शक्तियों का वर्णन है, कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में स्टेबल रहे इसकी चिंतन करना है। तो ऐसे ढेर सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। छ ओम शांति।